नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। और मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले के दौरान शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कांवरिया पथ पर सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था समय पर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पैदल पथ को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, शौचालय, साफ सफाई और पेयजल की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने अधिकारियों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा ताकि उन्हें जलाभिषेक के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को मेला की व्यवस्था के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन भी जमा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए दक्ष युवाओं की भर्ती करेगी। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि यंग प्रोफेशनल चयन संबंधी नीति 2026 के तहत विभाग 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल का चयन करेगा। यंग प्रोफेशनल का प्रारंभिक चयन 2 वर्षों के लिए होगा। विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए ये भर्तियां की जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में केंद्रीयकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। इस सेंटर का टोल फ्री नंबर है 14417 और 1800345417। इस नंबर के माध्यम से विद्यार्थी या अभिभावक विद्यालय से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि 31 मई तक चलने वाले अभियान के तहत और नामांकित बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 8 अंकों की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1,00,000 प्रसव में महिलाओं की मृत्यु दर 96 रह गई है। पहले यह 104 थी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इससे बड़ी उपलब्धि बताया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने का तुरंत आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस वर्ष की थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है। इस अवसर पर बिहार राज्य जैव विविधता परिषद सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्य की अनूठी प्राकृतिक संपदा को बचाने के संकल्प के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जैव विविधता संरक्षण के लिए आम लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण को व्यवहारिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक ओर दक्षिण बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो वहीं उत्तर बिहार में अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार में अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। कैमूर का अधिकतम तापमान 44.4, बक्सर का 43.4 और औरंगाबाद का 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज अरवल भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद कैमूर और रोहतास जिले में लू के साथ गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित दक्षिण मध्य भागों के 14 जिलों में लू जैसे हालात रहेंगे। वहीं विभाग ने आज पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सुपौल किशनगंज पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई है।
दिनांक 22 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अररिया किशनगंज एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। वहीं 6 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10:30 तक ही चलेंगी। यह आदेश सभी स्कूलों प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 26 मई तक लागू रहेगा। राज्य में बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे विमुक्ति अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में 34 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। श्रम संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस अवधि में 68 जगहों पर छापेमारी की गई। अभियान के तहत नियोजकों के खिलाफ 15 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना में पिछले दिनों 25 करोड़ रूपये मूल्य के स्मैक मिलने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषिकेश क्रांतिकारक को रांची से गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में बिहार पुलिस में सिपाही रह चुका है। वह नालंदा जिले के दीपनगर नगवा गांव का रहने वाला है। सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जिले के पोखरा थाना क्षेत्र के बुधनगड़ा गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। बांका सिविल कोर्ट परिसर से दो कैदी चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए। इस मामले में बांका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के कांगर पंचायत के कुहास में स्नान के दौरान चार किशोर महानंदा नदी में डूब गए। गोताखोरों के प्रयास से एक बालक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है। वहीं समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के शादीपुर बतनाहा गांव में पानी भरे गड्ढे में नहाने के दौरान डूबने से दो सगी बहनों की मौत हो गयी। मधुबनी जिले के बाबूपरी थाना क्षेत्र के दुनवारी गांव में पुलिस ने एक युवक को दो पिस्तौल और 100 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर समेत अन्य आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के सासाराम में दो दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से न्यू स्टेडियम फैजलगंज में आयोजित इस महोत्सव में लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर और वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 400 लीटर डीजल और ट्रांसफार्मर का 20 लीटर तेल जब्त किया गया। कटिहार जिले के बराड़ी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के तहत पुलिस ने 16 हाइवा और एक पोकलेन मशीन को जब्त किया है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पिछले चार दिनों में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक की जुर्माना राशि वसूली गयी। नक्सल मुक्त मुंगेर जिले के सवासीन पहाड़ के जंगलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने दो देशी बंदूक और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट संदीप कुमार ने बताया कि नक्सल गतिविधियों पर पूरी तरह विराम सुनिश्चित करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से पराजित किया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, पुलवामा हमले का सूत्रधार आतंकी हमजा बुरहान पीओके में मारा गया। प्रभात खबर की सुर्खी है, पुलिस को चैलेंज करने वालों को उसी की भाषा में 48 घंटे के अंदर मिलेगा जवाब, मुख्यमंत्री। दैनिक जागरण ने कोलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली मुंबई की दौड़ नहीं, बिहार के 3 अस्पतालों के लिए 6 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, 1 साल बाद सुधा दूध 2 रूपये हुआ महंगा। आज अखबार लिखता है, मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की महाबैठक, मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। और मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।